तो आपके ख्याल में FI ने क्या टेक्निक इस्तेमाल की जिसकी वजह से ये बातें सामने आ गईं?
हाँ देखिए, क्योंकि तहकीकात मैंने जैसे बताया आपको कि 19 तारीख से ही आगाज कर दिया गया था का सुबह से, और तमाम तर चीजें जिस तरीके से मेन सर्वर एग्जेक्ट के हेड ऑफिस में मौजूद है, जो FIA की कस्टडी में है, सीसीटीवी कैमराज जो है वो भी कस्टडी में ले लिए गए हैं, और जो खास तौर पे बिल्डिंग का जिक्र हम बार बार देख रहे हैं, जिसका जिक्र FIA के डायरेक्टर शायद हयात ने भी किया, और उनका ये कहना था कि ये बिल्डिंग जो है इसमें कोई बोर्ड वोट मौजूद नहीं था एग्जैक्ट का, लेकिन उसके बावजूद खुफिया इतला पर जब वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए हैं और शुएब शेख और मजिस्ट्रेट उनके हमराह थे, और जब वो सेकंड फ्लोर पर एक कमरे में गए तो वहां पर देखा कि लाखों की तादाद में डिग्रियां मौजूद थी, और उन डिग्रियों को जो है कब्जे में लिया गया और उस दफ्तर को सील कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो एग्जेक्ट की बिल्डिंग है उसमें भी जितने ऑफिस इस वक्त FIA के कंट्रोल में है, जिसमें सर्वर रूम है, इसमें HR है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जहां पर मुख्तलिफ टीमें FIA की तहकीकात कर रही हैं, कुछ सामान FIA की टीम जो है वो साइबर क्राइम के दफ्तर भी ला चुकी है, और उसकी डीकोड हमने देखा कि सिस्टम डीकोड किए गए, कुछ मशीनें ये बताई गई FIA ने, ये बताया कि ये वो मशीनें हैं जिससे स्टैम्प की जाती थी डिग्रियों पर, वो मशीनें भी कब्जे में ले ली गई हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मजीद जो है पेशरफ की जा सके।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें चंद मिनट। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ बोल के ब्यूरो चीफ एजाज़ ख़ान हैं, जो स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और एजाज़ ख़ान, आपको खुशांदेद।
शुक्रिया
जी, बताया जा रहा है वो टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ हैं। एजाज़ ख़ान, ये बताइए, आपसे जब बात हुई तो आपका ये कहना था कि एग्जैक्ट के जो मामलात हैं, और क्योंकि अब एग्जैक्ट के जो सरबराह हैं इनके ख़िलाफ़ भी एक जुर्म ये साबित किया जा रहा है, और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के अलावा इनको हवालात में लिया गया है। अब ये बताइए कि बोल को एग्जैक्ट से अलग रखना कितना मुश्किल होगा?
यकीनन एग्जैक्ट अगरचे बोल की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो एक आपने बात की है कि इसको उन पे जुर्म साबित किया जा रहा है, एक्चुअली अभी तक तो एलिगेशन है ना, ये FIR कटी है और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद मतलब वकला का जो है ना आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद जो जजमेंट आएगी उस पे मतलब होगा कि मतलब आया बेकसूर हैं या गुनाहगार हैं, ये तो जजमेंट उस टाइम होगी, उससे पहले तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक एग्जैक्ट और बोल का मामला है, बोल और एग्जैक्ट अलहदा एंटिटीज हैं। मैं बोल का नुमाइंदा हूँ, बोल के नुमाइंदे की ऐसे से मैं ये कहता हूँ कि हम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान भर में और बाहर के मुल्कों में से भी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटीज हैं उनकी तरफ से भी हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जर्नलिस्ट के जो राइट्स हैं उनके लिए, उनकी खातिर जो ना बोल टीवी को हर सूरत में आना चाहिए। इससे अगर खुदा न खास्ता बोल टीवी को नुकसान पहुंचा तो उससे जो है ना हजारों फैमिलीज मुतासर होंगी, 2500 से ज्यादा जर्नलिस्ट इस टाइम बोल टीवी में काम कर रहे हैं वो मुतासर होंगे। इसके अलावा जो है मतलब जो पाकिस्तान के अभी तक तो ये था कि कराची और इस्लामाबाद में जो है सहाफी तंजीमें या जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है ना ये बोल के हक में मुजाहरे कर रही थी कि बोल को जल्द लाया जाए, बोल को आना चाहिए, इसके जो रुकावटें इसके राह में खड़ी की जा रही उन्हें खत्म किया जाए। अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त कराची और इस्लामाबाद के अलावा पिशावर, कोयटा और लाहौर में भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जो एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि बोल के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां खत्म की जाएं और बोल को जो है किसी रुकावट के बगैर आना चाहिए, ये जर्नलिस्ट के लिए जो है बेहतर होगा।
यही सवाल मैं करना चाहूंगी एक्सप्रेस चैनल के एक जो नुमाइंदा हैं नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, हमने देखा कि पिछले दिनों जो टीवी खास तौर पे चैनल्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा मवाद देते रहे। आप भी जानते हैं कि बोल टीवी के जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं, और बाहर कैफ ये खबर तो बनती है। आपके ख्याल में इसको अब तक कवर क्यों नहीं किया गया है?
देखिए, जहाँ तक बात की मेरे दोस्त ने और जो मेरे साथी भाई हैं वो सब जो बोल में मौजूद हैं, हम भी उनके लिए बहुत वरी हैं, और हम भी यही हमारी भी यही बात है, हम भी यही चाहते हैं कि बोल टीवी जो है उसको आना चाहिए। जो साथी वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके भी घर है, उनके भी बच्चे हैं, सरमायादारी उनको भी अपनी चलानी है, उनको घर
چلانا ہے, لیکن ابھی جو بات ہے, ابھی جو سینیریو ہے وہ صرف ایگزیکٹ کے گرد ہے. بار بار اس بات کو میں دہراؤں گا کہ ابھی صرف انکوائری جو ہے وہ ایگزیکٹ کے خلاف ہے, لیکن اس میں جو بات کی گئی ہے کہ جب ثابت ہوگا اس کے بعد بات کی جائے گی, کیونکہ ابھی تو انیشیل اسٹیج پر ہے معاملہ, اور انیشیل اسٹیج پر ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی تحقیقات ہوتی ہیں, چلان پیش ہوتا ہے, وکلا جو ہے جرا کرتے ہیں, اور سرکار کی متعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. ابھی تو ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں, ایف آئی اے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید مقدمات جو ہیں درج کرنے کا امکان ہے, کیونکہ جو چیز مین سرور سے ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں اور جو فارنزک رپورٹس آئیں گی ان کی روشنی میں, لیکن ابھی اس پوری انٹروگیشن میں انویسٹیگیشن میں ایف آئی اے کی بول نیٹ ورک کا نام نہیں ہے. ابھی صرف اور صرف ایگزیکٹ کے گرد یہ ساری انکوائری ہو رہی ہے, اور ایگزیکٹ میں جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے, ایف بی آر بھی اس معاملے میں دیکھ رہا ہے اس معاملے کو, اور دیگر ایجنسیز بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں, لیکن اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. اور جو انکوائری کر رہے ہیں, جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں افسران, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا جرنلسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جرنلسٹوں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, اور وہ صرف اور صرف اس بات کی انکوائری کر رہے ہیں کہ جو آیا جعلی ڈگریوں کا معاملہ ایگزیکٹ سے اٹھا ہے اور نیو یارک ٹائم میں جس طریقے سے خبر چھپی تھی اس کی تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور آج سے میں یہ کہوں گا کہ جب عدالتی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ معاملہ مزید کھلتا چلا جائے گا.
ناصر بٹ, آپ ایک اور سوال کا جواب دیں, اس کے بعد ہم سیاسی تجزیہ کار بابر ایاز کی طرف جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں, ڈیکلن والش کی ایک رپورٹ آئی ہے آج نیو یارک ٹائمز میں, اور غالباً ان کے اپنے جو سورسز ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ کہا کہ شعیب احمد شیخ نے جب ان کو اٹھایا گیا اور ان کو ایف آئی کی کسٹڈی میں لایا گیا تو انہوں نے کچھ دھمکیاں بھی دیں ایف آئی اے کے افسران کو. یہ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ جی ناصر بٹ, جی ناصر بٹ کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی تجزیہ کار بابر ایاز لائن پر ہیں, اور بابر ایاز آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کا تبصرہ بھی سننا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو کئی سکینڈلز رہے ہیں ماضی میں, بڑے بڑے, بی سی سی آئی کا بھی سکینڈل ہم نے دیکھا, اس کی آپ یہ جو ایگزیکٹ کے سربراہ کو جس طرح سے پکڑا گیا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ایک فتح آپ سمجھ لیجئے بدعنوانی کے خلاف ہے یا کچھ اور؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب سٹوری آئی تھی تو وہ سٹوری تو صرف مطلب ایسی تھی کہ ایک دو دن سے تو اس کے بارے میں جب تحقیقات کر رہے تھے ڈیکلن والش تو وہ اور لوگوں سے بھی پوچھ رہے تھے, تو کچھ لوگوں سے جن سے پاکستان میں پوچھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم سے بھی پوچھا تھا, ہم سے بھی. تو اس کا مطلب کہ اس خبر جو ہے جس کے بارے میں سٹوری کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے, جب ہم بھی انویسٹیگیشن رپورٹنگ کرتے تھے تو ہم یہ جانتے تھے کہ اس آدمی کو کہیں بھی ہم جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ صاحب آپ کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایگزیکٹ کے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں. اور یہ بات اس نے جو ابھی وجاہت جو ہیں انہوں نے جو بول کے لیے ہائر ہوئے تھے انہوں نے خود بتایا اپنے ایک مضمون میں کہ ہمیں ڈیکلن والش نے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ وجاہت جو ہیں وہ این بی سی کے بھی رپورٹر ہیں پاکستان میں, تو ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے بات کی. اب اس کے بعد انہوں نے جا کر جب ان کو بتایا جو اونرز کو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیس کر لیں گے ہم ان کے اوپر اگر کریں گے. اچھا یہ ایک ایسی دلچسپ صورتحال ہے کہ جس میں جو ہے آپ ہر چیز پہ کہیں کیس کر لیں گے تو وہاں ذرا کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی اپنی ریپوٹیشن کا سوال ہوتا ہے, آپ انٹرنیشنل کمپنی ہوتی ہیں, تو کوئی اور لیجیٹیمیٹ کمپنی جو ہے نا بہت جلدی گھبرا جاتی ہے. مطلب ہم نے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھا کہ بہت چھوٹی سی بات پہ بھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹرنیشنل ساتھ کو خطرہ پہنچے گا, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یار ٹھیک ہے ان کو سوری دینے دو جو بھی کہتے ہیں ہمارے خلاف, اور پھر چاہے وہ اتنا مستند آدمی بھی ہو کوئی بہت سیریس جرنلسٹ ہے تو یہ ہمارے خلاف سوری دے گا اور ہم کیا ہوا ہم اس کو نوٹس بھیج دیں گے. ऐसा तो मैं इस चीज से एक दफा गुजर चुका हूँ, बहुत ही 70 की दहाई में जब हम सन अखबार के लिए काम करते थे तो सन के मालिक भी कुछ इसी किस्म की बात करते थे, वो भी इसी तरह के ब्राइट किड थे, LSC वगैरह के पढ़े हुए, मगर उनसे जो भी बात करते थे हम कहते थे साहब वो KSC का बिल तो दे दें, क्योंकि हम वहाँ काम करते थे, बिल भी बंद हो जाती, वो कहे कोई नहीं केस कर देंगे, अरे केस कर देंगे भाई, सॉल्व थोड़ी करता, इस किस्म का एटीट्यूड ही होता है ना, ये गलत होता है। दूसरी तरफ ये कि इसके एग्जैक्ट के बारे में इससे पहले भी जब बोल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, IT इंडस्ट्री के लोग थोड़े से मोहताज रहते थे और वो इनको अपने करीब नहीं आने देते थे, और अगर उनसे कुछ हम पूछते थे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी बन रही है और ये साफ नजर आ रही है तो उनके लोग गाड़ियां, तो वो बस दांतों तले जुबान दबा लेते थे, बताते नहीं थे कुछ। तो ये तो पहले भी मतलब बोल का तो चलिए ये है ना कि आप कहते हैं कि मीडिया की राइवलरीज है जो है भी, जिसमें बात सही भी है
जी जी,
क्योंकि लाजमी है। अब उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफर किए, जो हमारे दोस्त वहां गए उनके नजदीक वाकई एक गेम चेंजर था इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया के अच्छे पैकेज और पैकेजेस, और फिर उसके साथ साथ इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उनको कहा कि वो लगता था कि एक अच्छी कुछ हालात बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में पाकिस्तान में जैसे आप जानती हैं हालात कोई अच्छे नहीं है, बहुत सी जगहों पर तो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, देख एक दो दो महीने देर पे मिलती है, और कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, इधर से आए उधर से निकाल दिए, 100-100 आदमी एक दिन में निकाले जाते हैं। तो अब हमारा मसला जो है, मैं जो इस पर ज्यादा परेशान हूँ वो ये है कि देखिए बोल की पेरेंट कंपनी है एग्जैक्ट, और पैसे का सोर्स तो वही है ना, जहाँ से पैसा आ रहा है। अब इतनी हैवी सैलरी पे 2000 आदमी रख लिए, मुझे इस पर हैरत हो रही है कि 2000 आदमी की इतनी क्या जरूरत थी, 2000 आदमी रख लिए और उनको कहाँ से तनख्वाह देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप भी जानते हैं कि एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ किया गया है। हम अमेरिका भी चलेंगे, जहाँ से हमारे साथ इस वक्त पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहिल हैं, उसके अलावा हमारे साथ बोल के ब्यूरो चीफ एजाज ख़ान हैं, और क्योंकि बोल का ज़्यादा ज़िक्र किया सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार बाबर अयाज ने, तो हम एजाज ख़ान को भी मौका देंगे कि वो इस सिलसिले में कुछ बात करें। लेकिन आप लोग जो ये शो सुन रहे हैं इसमें मुफ्त कॉल करके शरीक हो सकते हैं, हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-89-0800-777-89। इस वक्त एक मुख्तसर ID ब्रेक लेते हैं। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी के सरबरा शोएब अहमद शेख को जाली डिग्रियां फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब कुछ जब हुआ, जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तफ्तीशी रिपोर्ट आई जो कि डेक्लिन वॉल्श ने लिखी थी। इस वक्त हम US आते हैं और हमारे साथ पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल हैं। डॉक्टर ताहिर, आपको खुशामदीद।
जी, बहुत शुक्रिया।
तो आप बताइए कि अमेरिका का ये आर्टिकल लिखना और न्यूयॉर्क टाइम्स का इस पर बार बार लिखना, आपने देखा ये तफ्तीशी रिपोर्ट आई फिर एडिटोरियल आया, अमेरिका ने क्यों इतना इस पर जो है ज़ोर दिया है? ख़ासतौर पे स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपने आप को इस मामले से अलहदा कर दिया, लेकिन हमें मालूम है कि अमेरिका भी एग्जैक्ट के मामले को बहुत दिलचस्पी से देख रहा है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं?
ये जनाब बहुत बड़ा स्कैम है, जाली डिग्रियों का कारोबार जो है वो तो बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है, लोग अपने आप को आलम फाजल और इस तरह का जाहिर करने के लिए पुराने वक्तों में झूठ बोला करते थे, फिर जाली डिग्रियों का कारोबार शुरू हो गया। अमेरिका में बताते खुद ये एक जो है झंझट के तौर पे मसला रहता है, और जहाँ कहीं भी आप नौकरी के लिए जाएं तो आपकी डिग्री जो है वो उसकी तस्दीक होती है, यहाँ तक कि 2008 में ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के अंदर है कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट के 350 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनके पास एक तरह से जाली डिग्रियां थी. इसके अलावा ड्रू जॉनसन का इन्होंने जिक्र किया है मिस्टर वॉश साहब ने, कि ड्रू जॉनसन जो है वो 2013 में ओलंपिक स्विमिंग टीम के कोच थे, उनकी रोशेल यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने डिग्री दी थी अपने जॉब के लिए वो जाली निकली. इसके अलावा आप देखें कि इससे जो और मुतासर लोग हैं उसमें एक फेमस केस उन्होंने एलिजबेथ लॉबर का भी जिक्र किया है. अमरीका में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को घर पे तालीम देते हैं, होम स्कूलिंग इसे कहते हैं, कि बच्चे जो हैं वो ख़राब ना हो, इखलाकी तौर पर उनकी अच्छी तरबियत हो, और कई दफ़ा स्कूल बहुत दूर होते हैं. तो ये एक ऐसी औरत थी जिन्होंने होम स्कूलिंग ली थी और उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं था, तो उन्होंने अमरीका से किसी कहीं से कोई डिप्लोमा लिया $350 का. तो वो बाद में जब वो जॉब के लिए लेके गई तो वो जाली निकला, तो करते करते बात जो है वो इन तक पहुंची, एग्जैक्ट तक पहुंची. तो उसमें फिर वो लॉसूट वगैरह भी हुआ. तो और भी अमेरिका में 2-3 कंपनियों ने इनको एग्जैक्ट को ये कहा था कि इनके जो नाम इन्होंने दिए हैं वो सब जाली हैं, और उनका
जी जी डॉक्टर ताहिर गालिबन यहाँ अमेरिका से कुछ लोगों ने मिलकर, हज़ारों लोगों ने बल्कि मिलकर कोई लॉसूट भी फाइल किया था एग्जैक्ट के ख़िलाफ़, और गालिबन हमें जो इतलात मिली हैं वो ये कि कोई $22 मिलियन का एक सूट है जो इस वक्त एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ है. यही सवाल मैं करना चाहूँगी बाबर अयाज से. बाबर अयाज आप बताइए कि आप क्या देखते हैं, कि क्योंकि इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ उठाए गए हैं शोएब अहमद शेख के ख़िलाफ़, और एक है मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला, आपके ख्याल में ये जो इस वक्त केसेस हैं इनका दायरा कहाँ तक पहुँचेगा और किन किन अफराद को इसमें खींचा जाएगा?
देखिए पहले तो मैं एक बात करता चाहूँ, अभी आपने BCCI का भी प्रश्न किया था
जी,
तो जब BCCI का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था जो उसके 15 से 1 साल पहले था, जो कोलंबिया के ऑपरेशन, तो $32 मिलियन का थे
दुनिया में जी. बाबर अयाज आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन हम बोल के ब्यूरो चीफ एजाज ख़ान की तरफ आते हैं. एजाज ख़ान आप बताइए, आप पुरुमीद हैं कि बोल शुरू हो सकेगा, अब जब आप समझते हैं कि इंक्वायरी का दायरा बढ़ता जा रहा है तो ये उम्मीदें आप में अभी तक कायम हैं?
यकीनन जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, बोल से वाबस्ता अफराद है, बोल की मैनेजमेंट एक बैठी है, वो काम कर रही है, वो चैनल को टेस्ट ट्रांसमिशन के फेज से गुजार रही है, और इस वक्त रमजान को 18 तारीख को जो है ये चैनल फुल फ्लेज ऑन एयर जाएगा. जर्नलिस्ट कम्युनिटी की ये कमिटमेंट है, ये कोशिश है, बल्कि हमारे साथ जो बाहर के जर्नलिस्ट हैं, दूसरे चैनल्स के जर्नलिस्ट हैं, वो सब उन सब की ये ख्वाहिश है, वो हमारे साथ मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं कि बोल को हर सूरत में आना चाहिए. और हम ये नहीं समझते कि अगर कोई एग्जैक्ट के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो एग्जैक्ट के मालकान ये कहते हैं कि वो हर इन्वेस्टिगेशन के लिए, हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं. तो वो जहाँ तक मैं बोल के नुमाइंदे की हैसियत से ये बात कह सकता हूँ कि हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ये प्लेज है, ये हम वाफ करते हैं कि हम कोशिश होगी कि ये चैनल जर्नलिस्ट के सर्वाइवल के लिए आना चाहिए. ये चैनल खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह इसमें कोई रुकावट खड़ी की गई इसके रास्ते में, तो उससे मुंसलिक जो 2200-2500 जर्नलिस्ट हैं उनके उनकी फैमिलीज वो सब मुतासर, हजारों लोग मुतासर हो जाएंगे इस चैनल से. तो इसमें ये हर इस टाइम पाकिस्तान में हर जर्नलिस्ट ये रियलाइज कर चुका है कि बोल को हर सूरत में आना चाहिए. तो उसके लिए जो है जो हमारी जो लीडरशिप है, जो बोल में हमारी सीनियर मैनेजमेंट है, वो सब इसी में काम कर रहे हैं, और हम सबका ये पुख्ता अजम है कि बोल को हर सूरत में लाएंगे
जी. और ज़ाहिर है कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी परेशान है इस सिलसिले में, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है अब बोल से आगे निकल गया है, लिहाजा बाबर अयाज जो सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनको दोबारा लेते हैं. बाबर अयाज आप भी जानते हैं कि मामलात जो हैं वो अब क्योंकि आगे बढ़ गए हैं, कहा जाता है कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये एग्जैक्ट की स्कीम चलाई गई, और हमने भी सुना है कि बहुत सारे अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अपना काला धन दुबई वगैरह शिफ्ट करते हैं. आप क्या देखते हैं कि ये बोल का स्कैंडल जो है इसकी तारें कहां कहां से जाके मिलेंगी?
देखिए, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है तो मैं समझता हूं कि बोल जो तो नहीं कह सकते बट एग्जैक्ट जो है
जी,
वो बहुत थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग की बात बनती होगी उसके ऊपर, मगर जो असल चीज है ना वो जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का है तो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग तो बहुत बड़े स्केल पे होती है, जिसका कोई हजम जो है वो तकरीबन एटलीस्ट उतना ही होगा जितना कि पाकिस्तान से रेमिटेंसेस अंदर आती है उतनी बार किसी न किसी फॉर्म में होती है, तो वो तो एक अलग चीज है। इस सिलसिले में जो ये केस है इसमें अभी जो बात हो रही है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि साहब इन्होंने कुछ 300-400 मिलियन डॉलर की जो है जाली डिग्रियां बेच दी, और दुनिया में जो जाली डिग्रियां बिकती हैं उसकी भी मार्केट कोई समथिंग लाइक 10-15 बिलियन डॉलर की है, तो उसमें ये एक जस्ट खतरा है और ये पकड़े गए, जैसे हमारे बीसीसीआई के लोग पकड़े गए थे, उनका भी छोटा सा हिस्सा था उसके अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा है। और अमेरिका से तो जगह है जहां से बहुत पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, एक दो बड़े मेजर एंकर्स, एक दो बड़े सियासतदान जो डॉक्टरेट के लिए डिग्री लेके घूमते, उनसे पूछो तो वो वहीं की है उनकी, ऐसे एक कमरे वाली यूनिवर्सिटीज की। तो ये धंधा बहुत बड़ा है जाली डिग्रियों का, इसमें लाजमी है एग्जैक्ट का भी एक रोल था और उसको जो उसकी सजा मिलेगी, मगर मुझे तो सिर्फ फिक्र अपने साथी साथियों की है।
जी, बिल्कुल।
मैं समझता हूँ कि जो बोल में काम कर रहे थे उनको उतनी तनख्वाहें तो शायद ना दे कोई, मगर इसको किसी तरह से कुछ सैलवेज जब भी होगा, मगर वो लीगल प्रोसेस ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
जी जी,
एकदम नहीं होगा कि किसी को उठाकर गवर्नमेंट कहे कि अच्छा भाई फला बिजनेसमैन को हम दे देते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए और आप ये चैनल लॉन्च कर दें, तो उसका कोई ना कोई तो वाली वारस करना बनाना पड़ेगा ना, जिसके पास पैसे भी हों। तो अभी तो ऑपरेशन में नहीं आया था, तो ऑपरेशन में आएगा जब और पैसे बढ़ जाएंगे ना उसका खर्चा, तो इसकी इट्स अ बिग थिंग जो हमारे सहाफी साथी हैं वहाँ उनके लिए भी जरूरी है कि वो उसकी बैलेंस शीट देखें, उसका फ्यूचर प्लान देखें कि भाई कितना इनकम उनका इम्कान था, कितना खर्चे का था, कहाँ से पैसे आएंगे फ्यूचर में, अभी जो बोल बना था उसका कितना पेड अप कैपिटल है, वो पैसा कहाँ है, उस पर कितने पैसे लेवरेज हो सकते हैं, बहुत सी चीजें होंगी। और फिर उसके बाद लाजमी है अगर वो इतने बड़े एसेट हैं इन लोगों के नाम पे होंगे शुएब वगैरह के, उनको कैसे चेंज होंगे, वो तो जब केस उनके ऊपर साबित होगा तभी तो हुकूमत उनसे एसेट उनके छीन सकेगी।
जी जी,
कि लिक्विडेशन में जाएंगे।
जी, बिल्कुल। आपने 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 एक बहुत
अहम, हमारे साथी बहुत नुकसान में रहेंगे।
जी जी,
और उनको बहुत अरसे तक बेचारों को शायद तनख्वाह ना मिले, क्या हो, तो परेशानी की बात तो है मेरे। जी जी,
आपने एक बड़ी अहम बात उठाई और मैं ये चाहूंगी कि डॉक्टर ताहिर रोहेल उस पर कमेंट करें। डॉक्टर ताहिर, आपने भी सुना कि ये जो जाली डिग्रियों का जो मामला है, एग्जैक्ट ने तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा क्लेम किया था, बाकी ये रैकेट तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ कांग्रेस इस के मुतालिक क्या सोच रही है कि जिसे कहते हैं ओवरसाइट करने के लिए क्या कोई नए कवानीन बनाए जाएं, क्या किया जाए ताकि बैन अल-अक़वामी सतह पर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए?
इसमें जहाँ तक क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है और यूएस गवर्नमेंट और की उसकी ओवरसाइट उस हद तक मौजूद है, उसमें कवानीन पहले से मौजूद हैं और कवानीन जो हैं वो उनका जोर जो है ज़्यादा वो मनी लॉन्ड्रिंग की इस साइड के ऊपर है। ये क्यूबा और इस तरह के जो नॉर्थ अमेरिका में ये बिजनेस जो है वो काफी है, इसी तरह जो लैथविया और साइप्रस और इस तरह के जो कंट्रीज हैं जहाँ पे कवानीन कम है या जहाँ कानून की गिरफ्त किसी हद तक कम है, इनके ताने बाने वहां तक जाते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट की जो रीच है वो काफी हद तक लिमिटेड है, क्योंकि उसमें मसलन ये जो ईस्टर्न यूरोप के जो इलाके हैं वहां पे इनकी रीच टेक्नोलॉजिकली और एफबीआई की एजेंट्स का जाना और ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत मुश्किल से होती हैं, और यहाँ पे जो क्राइम है उसकी नोयत मालियाती ज्यादा है, बैंकों पे वो ज्यादा हमले करते हैं, सिटी बैंक से उन्होंने कोई 250 मिलियन डॉलर जो है वो चुरा लिया था, तो इस तरह से लॉ एनफोर्समेंट की और कानून बनाने वालों की ज्यादा जो है वो ख्वाहिश यही है कि इसमें जो जुर्म का पेशा है, इसमें जो तशद्दुद पसंदी और इस तरह की जो अमेरिकन सिक्योरिटी के जो इससे जो नुकसान के खतरात हैं उनको जो है वो डील किया जाए और जाली डिग्रियां जो हैं वो उसी क्राइम बास्केट में आती हैं, उसी टोकरी में आती हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं है।
और शायद ये एम्फेसिस अब तब्दील हो जाए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है यहाँ पर वो ये है कि एग्जैक्ट के इस स्कैंडल के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है सरकार को कि अब इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल, उनके साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार बाबर अयाज और बोल के ब्यूरो चीफ एजाज़ ख़ान। बहुत शुक्रिया और ख़ुदा हाफ़िज़। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है और अल्फाज की जंग जो है वो और ज़्यादा शदीद हो गई है। हम आपको इस हवाले से जो बिल्कुल ताज़ा एक रिपोर्ट है, यानी कि भारत के दिफा के जो वज़ीर है मनोहर पारिका, इनके हवाले से एक रिपोर्ट सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो दहशतगर्दी होती है उसका मुकाबला दहशतगर्दों को ही करना चाहिए। हम बात करेंगे भारत से एक सियासी तज्ज़ियाकार मनीष कुमार से, जो कि इस वक्त बताया जा रहा है स्काइप के ज़रिए हमारे साथ लाइन पर हैं। और पाकिस्तान से होंगे इम्तियाज़ आलम, जो साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अभी टीम जमा होती है, लेकिन आइए इस हवाले से आप लोगों को एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं। पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान के ऐवाने बाला यानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने भारत के वजीर दिफा मनोहर पारेकर के उस बयान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए भारत दहशतगर्दी का इस्तेमाल करेगा। कमेटी के सरबराह मुशाहिद हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि कमेटी ने इस सिलसिले में मुतफिका करारदाद मंजूर की है। उन्होंने कहा कि भारत के वजीर दिफा का ये बयान बज़ाहिर उनकी हुकूमत की पॉलिसी की गमाजी करता है।
हमने आज ही मुत्तफिका करारदाद पास की अपने इजलास में, जो सेनेट की दिफाई कमेटी का था, और उस रेजोल्यूशन में हमने कहा है कि ये जो जारहाना और गैर जिम्मेदाराना बयान हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है, उससे तो एक किस्म की कन्फेशन है और एक किस्म का उन्होंने ताइद की है, एडमिशन की है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को अपनी रियासत की पॉलिसी का हिस्सा समझता है। तो ये एक बयान जो है इसके बड़े खतरात हैं अमन और सलामती के लिए खत्ते में, और खासतौर पर हिंदुस्तान के जो हैं हमसायों के साथ।
सेनेट की दिफाई कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन ने कहा कि करारदाद में हुकूमत से यह कहा गया है कि इस मसले को अक्वामे मुत्तहिदा समेत दीगर मुतलका फोरम्स पर भी उठाया जाए।
हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि इस मसले को उठाया जाए अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, यूरोपियन यूनियन में और OIC में भी, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का जो जहन है, हिंदुस्तान का जो सोच है, हिंदुस्तान की पॉलिसी है, जिसका काफी डिफेंस मिनिस्टर ने की है और जिसकी अभी तक तरदीद नहीं आई, तो ये एक अमन के लिए खतरा है, सलामती के लिए खतरा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात के लिए खतरा है।
भारतीय वजीर दिफा ने कहा था कि कांटे से कांटा निकालना चाहिए और उनका मुल्क मुंबई में हुए दहशतगर्द हमले जैसे वाक़े से बचने के लिए इंतहाई इकदाम करेगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर ब्रायमूर खारजा और कौमी सलामती सरताज अजीज भी भारत के वजीर दिफा के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका दुश्मन है और ये दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि वह इस मसले से निमटने के लिए मिलकर कोशिशें करें। पाकिस्तान की सेनेट की दिफाई कमेटी के हालिया बयान पर भारत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, और डॉक्टर मनीष कुमार की तरफ आते हैं, जो कि स्काइप के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और डॉक्टर मनीष, आपको खुशामदीद। जी, आपको हम देख भी सकते हैं। और ये बताइए, ये जो भारत के वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान में लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। जी अच्छा, डॉक्टर मनीष की आवाज़ नहीं आ रही है। गालिबन इस वक्त हमारे साथ इम्तियाज़ आलम हैं, जो साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इम्तियाज़ आलम, आपको खुश आमदे। जी, बताया जा रहा था कि हमारे साथ इम्तियाज़ आलम हैं। जी जी जी, तो आप बताएं, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि सख्त जो है अल्फाज की एक जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। आज भी जो बयान आया है भारत की तरफ से, इसकी सख्त लफ्ज़ों में सेनेट ने तरदीद की है और इसको कंडेम किया है पाकिस्तान की सेनेट ने। आप बताइए, आप क्या देखते हैं, ये कशीदगी क्यों कर इस कदर शदीद हो गई है?
मेरा ख्याल है कि ये अभी तक ये लोग बातचीत कहाँ से शुरू की जाए इस बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है। मोदी हुकूमत भी लगता है कि बातचीत के मूड में नहीं है, और इधर भी लगता है नहीं है। और हमारी आदत है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि फिर हम बदले हाजी काफी करते हैं और बयानों में काफी इस तरह की बातें कर जाते हैं। और खालिबन ये डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मकामी तो जो हल्के इंतखाब हैं या जज्बात हैं, उन्हें जिंदा रखा जाता है मुखासमत के जज्बात। और मैं समझता हूँ कि ये जो वजीर दिफा का बयान था, ये बड़ा खौफनाक बयान था। और इस पे पाकिस्तान में पहले ही एक काफी इल्जाम लग रहा है भारत पे कि वो रॉ इस्तेमाल कर रहा है। रॉ जो है वो तालिबान के पीछे भी है, और रॉ बलूचिस्तान में जो चल रही है तहरीक परस्ती की या लहदगी की, उसमें भी रॉ का हाथ है। तो इधर से भी काफी इल्जाम आ रहे हैं। ये जो वजीर दिफा का बयान आया है वो एक तरह से शहादत सी मिल गई है यहाँ पे, तो यहाँ भी रद्द अमल काफी सख्त पैदा हो रहा है। ये इस तरह की बेमानी किस्म की लफ्जी जंग हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बार बार देख चुके हैं। अच्छा। इसका तो नजरिया नहीं निकलेगा, अलबत्ता इससे फिजा खराब होगी और इससे यकीन ऐसी कुतों को मदद मिलेगी जो दहशत गर्दी में यकीन रखती है या जो वायलेंस में यकीन रखती है।
जी, ये बताइए कि हमने देखा कि जब फ़ौजी हुकूमतें आती हैं, मिसाल के तौर पे जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो बहुत ही अजीब सी बात है कि उस वक्त ताल्लुकात निस्बतन बेहतर थे भारत के साथ। अब जब कि दोनों मुल्कों में, भारत और पाकिस्तान में, जमहूरी हुकूमतें हैं, तो उसके बावजूद या कह लीजिए शायद उसकी वजह से ये हालात इतने कशीदा हो गए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं?
ये एक पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला रहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत गालिबन फौजी हुक्मरानों के साथ ज्यादा अपने आप को आसान ईस्ट महसूस करती है, उनके लिए आसानी होती है बात करने में कि शायद वो मरकज के एक ताकत से बात कर रहे हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि मुशर्रफ के दरमियान और वाजपेयी के दरमियान काफी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, मुशर्रफ और मनमोहन सिंह के दरमियान बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, और यहाँ तक वो आके भी कश्मीर में कई पर मायदा हो गया था जिसका कि ऐलान करना बाकी था। और मनमोहन सिंह पता लगा कि उनके पास इख्तियार नहीं था और वो नाम के वजीर आजम थे और उनके वजीर उन्हें जवाब भी नहीं देते थे, रिपोर्ट भी नहीं करते थे। तो लगता ये है कि लेकिन जब सियासी हुकूमतें कोशिश करती हैं तो फौज एक सख्त कदम लेती है और वो कर नहीं पाती, जिस तरह पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हुआ और अब नवाज शरीफ भी एक एजेंडा लेकर आए थे अब भारत के साथ अमन का। खासकर पाकिस्तान में सियासी कुर्ते ज्यादा चाहती हैं हिंदुस्तान की निस्बत हिंदुस्तान से मामला तय करने की बात।
जी जी,
अभी आप देखते हैं कि
इम्तियाज आलम हमारे साथ सिर्फ दो मिनट रहे। जी जी, इसलिए कि इस पर हम डॉक्टर मनीष कुमार को सुनना चाहते हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। डॉक्टर मनीष कुमार, ये बताइए कि ये जो भारत के वज़ीर दिफा हैं, उनके बयान को आप किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है आप सरकार की तो नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस मौके पे ये बयान का आना क्या समझ में आता है?
देखिए ये बयान जिस टेलीविजन कार्यक्रम में दिया गया और उस जगह पे मैं भी मौजूद था और ये जो जवाब जो दिया गया एक सवाल के ऊपर दिया गया था और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान में जो उसके रिएक्शन आ रहे हैं ये अनकॉल्ड फॉर है. 1990 के तहत आज से 20-25 साल पहले से ही जब से हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकी घटनाएं जब कश्मीर में हो रही थी उस समय से ही हिंदुस्तान की ये पॉलिसी रही है कि जो टेररिस्ट जो सरेंडर्ड टेररिस्ट हैं उनका इस्तेमाल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के तहत किया जाता रहा है हिंदुस्तान के अंदर में. ये कोई नई बात नहीं है.
अच्छा.
और इसको जो है इखवानीज कहते हैं. अगर आप गूगल पे जाएंगे और इखवानीज इन कश्मीर आप टाइप करेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है पूरा उसका इतिहास मिल जाएगा. और बहुत ये डिसीजन जो है जो 1990 से चला वो काफी दिनों तक चला और काफी मैंने मनमोहन सिंह की सरकार के बहुत सारे समय तक ये चलता रहा. फिर इस तरह की चीजों को एक हॉल्ट कर दिया गया उसको पीछे डाल दिया गया. बकायदा ओपन पॉलिसी भारत सरकार की रही है. बकायदा जो टेररिस्ट होते थे वो लोगों के सामने आकर के वो सरेंडर करते थे उनकी यूनिट बनती थी वो बकायदा वो काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो बकायदा हिस्सा लेते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. तो ये कोई नई बात नहीं है जिसे लेकर के इतना पाकिस्तान के अंदर में डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है.
जी 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 इम्तियाज आलम जाने से पहले अगर आप जवाबन कुछ कहना चाहें.
देखिए ये जो बात तशरीह कर रहे हैं मुझे अफसोस हुआ है इनकी तशरीह का ये जान उससे कतई मुख्तलिफ है कि कश्मीर में जो लोग जिन्होंने सरेंडर किया वो लोग बन गए. ये बयान की ज्यादा सियाको सवाल ज्यादा वसी था. सवाल के जवाब में कहा या जवाब के सवाल में कहा उससे फर्क नहीं पड़ता कितने उन्होंने लफ्ज नहीं डाले. लेकिन इसका जाहिर है कि पाकिस्तान में इसने काफी इस बात को भड़काया है और मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बयान था. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान और भारत में प्रॉक्सी जंग का होना कोई अच्छी बात नहीं है ना खित्ते के लिए और ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए अच्छा है. वो तो प्रॉक्सी वॉर का एक इशारा है क्लियर उस बयान में.
अच्छा.
और अगर ये सबको पता है कि प्रॉक्सी वार हिंदुस्तान पाकिस्तान में चलती रहती है और अभी अफगानिस्तान में भी ये खेला जा रहा है जो कि की सूरत में अच्छा नहीं है. ना पाकिस्तान हिंदुस्तान मिलकर भी अफगानिस्तान की सूरत हाल को नहीं संभाल सकते. पूरी दुनिया नहीं संभाल पा रही तो पाकिस्तान और भारत इस बात की बोली है इस खेत की बोली है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉक्सी जंग चल रही है.
अच्छा, अच्छा.
इनके बयान ने इस बात को और एक शह दे दी इस बात को. जो बात हो रही थी वो खुल के जबान पे आ गई.
जी जी.
और ये प्रॉक्सी वार की सूरत में अच्छी नहीं है. लोगों को इसके इम्प्लीकेशन का पता नहीं है इसलिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं फिर उनकी तौजीह की जाती है वजाहत की जाती है कि इस सियाको सवाल में आ गया था बात ये नहीं है.
अच्छा, बहुत शुक्रिया. ये थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार जो सैफमा के सेक्रेटरी जनरल भी हैं इम्तियाज़ आलम. आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़. डॉक्टर मनीष कुमार आप हमारे साथ रहें इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो अगला अहम मौजू है इस पर भी आप कुछ बात करें. हमने जो इतलात हमारे पास आई हैं वो ये है कि भारत में इस वक्त एक गर्मी की लहर आई है और गालिबन ये पाकिस्तान में भी किसी हद तक है लेकिन भारत की जो सूरत हाल है वो तश्वीशनाक है. जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि कोई 1000 के करीब लोग जो हैं इस वक्त गर्मी की वजह से हलाक हो गए हैं. आप बताइए इसमें कुछ नाअहली नज़र आती है भारतीय हुकूमत की.
देखिए इसमें तो दो जैसे हिंदुस्तान में ये बिल्कुल सही बात है कि 1000 से ऊपर लोगों की जाने जो है वो जा चुकी है गर्मी के अंदर में. लेकिन ये जाने क्या सरकार के अहलियत की वजह से गई है या मेडिकल फैसिलिटीज के नहीं होने की वजह से गई है या फिर जिस तरीके के जो इस बार जो गर्मी जो पड़ रही है वैसे वैसे जगहों पे गर्मी मैंने जो ये मौसम खराब हुआ है जिन जगहों पे लोग बकायदा इस चीज के लिए रहते थे कि भाई 35 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन उन जगहों पे भी हो रहा है. और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर लोग गर्मी से मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान के रूरल इलाके में। और ये मौतें खास करके जो तेलंगाना का जो इलाका है, जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, वहां से ज्यादा ये सुनने को आ रहा है। और वाकई उधर वहां पे गर्मी तो एक स्थिति खराब है ही, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं या फिर उस पर ये खबरें यहाँ पे हिंदुस्तान की मीडिया में ये अभी तक नहीं बताया जा रहा कि ये लोग जो है क्यों लोग मर रहे हैं और ये बदइंतजामी की वजह से मर रहे हैं या फिर
आप सही कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ भी स्ट्रक्चरल जो मसले हैं। हम इसी सिलसिले में एक माहौलियाती सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सरबरा नासिर पंवर की तरफ जाते हैं। नासिर पंवर, आप बताइए कि पाकिस्तान में और सदर्न पाकिस्तान सिंध जहां आप हैं, वहां किस तरह के मसाइल हैं, गर्मी की क्या सूरत हाल है और सरकार किस हद तक तैयार नज़र आती है कि अगर गर्मी से लोग मर गए तो उसके सिलसिले में कुछ किया जाए?
गर्मी के हवाले से ख़ास तौर पे आप पता है कि जो ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके, वो गर्मी के हवाले से और ख़ास तौर पे अप्रैल और मई महीने जो हैं वो काफ़ी क्रूशल होते हैं। और उस हवाले से पहले जैसे गर्मी के हवाले से सिर्फ सिंध का जैकबाबाद शहर कहा जाता था कि वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है टेम्परेचर, लेकिन आजकल सूरत हाल ये है कि तकरीबन तमाम सिंध के अज़ला, जिसमें नादरन सिंध हो, चाहे वो जैकबाबाद हो, शिकारपुर हो, या सखर हो, या घोटकी हो, या दादू हो और नवाबशाह, ये सारे अज़ला जो हैं शदीद इस वक्त गर्मी के इसमें घेरे में हैं, अब दबाव में हैं। और वहाँ पर भी काफ़ी जो कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं, और क्योंकि 50 डिग्री पहले जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जैकबाबाद तक महदूद था, अब वो पूरे सिंध में और जो पंजाब का ख़ासतौर पर सदरन पंजाब जो है, मुल्तान और बाकी जो अज़ला हैं, वहाँ पे भी जो है गर्मी की शिद्दत पाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जैसे अक़्वामे मुत्तहदा का जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उनकी भी जो पेशन हुई थी उस हवाले से यही था कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले सालों में जो गर्मी में शिद्दत होगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हमें जो है स्कूलों में या निसाबों में पढ़ाया जाता था कि हमारे यहाँ चार मौसमें होती हैं, लेकिन आजकल आप देखें कि जो विंटर है या ऑटम तकरीबन वो रिड्यूस हो गया है और जो समर है उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है।
बिल्कुल सही उस हवाले से। और हम देखेंगे कि इसकी मौसम की जो शिद्दत है इसकी वजह से क्या असरात पड़ते हैं। नासिर पंवर, आप हमारे साथ रहें इस मोड़ पे हम खुदा हाफिज़ कहते हैं भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़ियाकार डॉक्टर मनीष कुमार को, क्योंकि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ जाते हैं। और मौजू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तंबाकू नोशी में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि ख्वातीन भी सिगरेट पी रही हैं। इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ एक चेस्ट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम रिजवी हैं, उनका हम मशवरा सुनेंगे। और पहले सेगमेंट से हमारे साथ हैं माहौलियात से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर पंवर। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, हम सबसे पहले तो आपको एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ये एक वीडियो रिपोर्ट है जिसमें वार्निंग दी गई है कि तंबाकू नोशी किस हद तक मुज़िर है। आइए सुनते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट।
No single study can answer that question as to why PAD is both so common and increasing in prevalence. But these authors and other research would suggest that it's a combination of a wider exposure to the risk factors that cause artery blockages, like smoking, high blood pressure, diabetes, and cholesterol.
But of all of the risk factors, he says, one stands out.
without doubt, the most important one is tobacco smoke in all of its forms.
The research shows that peripheral artery disease is expected to continue to rise dramatically. And about 70% of those who have PAD live in low or middle income countries, mainly in Southeast Asia and the Western Pacific regions. Hirsch says the study should be a call to action for public health officials around the world to start education campaigns.
When a disease is this common, the answer is usually prevention. And prevention starts with an awareness of risk.
The key, he says, is to persuade people to give up bad habits. Hirsch says that for a pandemic already affecting 250 million people, local, national, and international health officials have to start getting the word out now. Carol Pearson, VOA News.
जी हम डॉक्टर नदीम रिजवी की तरफ जाते हैं जो कि सीने की बीमारियों के माहिर हैं और डॉक्टर नदीम आपको खुशामदीद
शुक्रिया
तो जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उनको ज़रा बताइए कि तंबाकू नोशी किन किन बीमारियों को जन्म देता है क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये वबा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैलती जा रही है जी
देखिए तंबाकू नोशी किसी फॉर्म में भी की जाए या किसी फॉर्म में भी तंबाकू का इस्तेमाल किया जाए ये मुजरत सेहत है कहा ही जाता है तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं और जो कि मोहताजगी का सबब बनती हैं वो सारी की सारी तंबाकू नोशी की वजह से होती है ऐसे तकरीबन 8 से 9 कैंसर हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं
डॉक्टर नदीम आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है हम आपको दोबारा कॉल करते हैं लेकिन नासिर पंवर की तरफ लौटते हैं नासिर पंवर आप बताइए आप हमारे साथ इस वक्त स्काइप के ज़रिए शामिल हैं आप जानते हैं कि आप माहौलियाती माहिर हैं आप जानते हैं कि धुएं का जो मसला है वो बाहर का तो होता ही है पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेकिन जब लोग सिगरेट स्मोक करते हैं तो धुआं अंदर ले जाते हैं ये बताइए ये क्यों कर सेहत के लिए इतना ख़राब है
जी मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जैसे फिगर्स आई हैं कि पाकिस्तान का शुमार जो है दुनिया के चार ऐसे ममालिक हैं जो टॉप स्मोकिंग कंट्रीज में शामिल हैं जिसमें मलेशिया है और वियतनाम है और पाकिस्तान भी है और इस तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो ट्रेंड है हमारे यहाँ एक तो पेरेंट्स जो हैं जो बड़े हैं हमारे उनको बड़ा ख्याल करना चाहिए ख़ासतौर पे अपने बच्चों के सामने भी वो स्मोकिंग होती है और हमारे यहाँ कानून साजी भी हुई है माजी में कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं जिसमें ख़ासतौर पे ऑफिसेज हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे तंबाकू नोशी मना है लेकिन वो इस हवाले से हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है और हम देखते हैं कि जो तालीमी इदारे हैं या दफातर हैं या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं और न सिर्फ एक तो स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो तो उससे जो है बिल्कुल डायरेक्ट मुतासर होते हैं लेकिन जो नॉन स्मोकर्स हैं जो कि पैसिव स्मोकर्स जिनको कहा जाता है तो उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है और मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से एक साइलेंट किलर है और न सिर्फ इसके जो समाजी इक्तसादी लेकिन जो एनवायरमेंटल हेल्थ के हवाले से जो भी बहुत बड़े इश्यूज हैं
जी जी।
और मैंने ये भी देखा
नासिर पवन आप हमारे साथ रहें क्योंकि डॉक्टर नदीम रिजवी लौट गए हैं और डॉक्टर नदीम आप बताइए आप हमें सुना रहे थे आपकी लाइन हमें काटनी पड़ी लेकिन आप बता रहे थे कि तंबाकू नोशी के किन किन क्या क्या असरात हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं
देखिए मैं ये बता रहा था कि तंबाकू को इस्तेमाल किसी तरीके से भी किया जाए चाहे वो स्मोकिंग की जाए चाहे वो गुटखा पान छाजिया के तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये मुजरत सेहत है एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं और जो कि मोहताजगी का सबब बनती है वो सारी की सारी तंबाकू रिलेटेड तंबाकू से ही रिलेटेड है दूसरी चीज़ ये है कि इससे कैंसर ना सिर्फ सांस की नाड़ियों का कैंसर मेदे का कैंसर मुंह का कैंसर और लबलबे का कैंसर पेशाब की मसाने का कैंसर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर के सबब बनती हैं अगर हम कहें कि कैंसर से बचने का एक वाहिद तरीका बता दिया जाए तो वो तंबाकू नोशी ना खुद की जाए ना अपने सामने किसी को तंबाकू नोशी करने दी जाए
जी डॉक्टर नदीम ये बताइए ये तो बातें काफ़ी दुनिया भर में जो हैं वो आम तौर पे बताई जाती हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क में बताया जाता है कि सिगरेट्स अब ब्लैक में बेची जा रही हैं आज ही की एक रिपोर्ट है कि जून का जो बजट आ रहा है इससे कबल ब्लैक में سگریٹس کو بیچا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر وہاں پر ڈیمانڈ کیوں ہے سگریٹ سموکنگ کے لیے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ تیسری دنیا میں ایک تو تعلیم اور شعور کی فقدان ہے, لوگوں کو یہ معلومات صحیح طور پہ پہنچائی نہیں جاتی ہیں, اور اگر معلومات بھی ہیں تو ایسے میجرز نہیں لیے جاتے جس سے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنے ہاتھ تمباکو نوشی کو کم کر دیا ہے. مثلا میں بتاؤں کہ آل دو ہمارے پاس یہ لاء موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں میں سرگت نہ دی جائے, اس کے عریب قریب سرگت نہ بیچی جائے, کھلی سرگت نہ بیچی جائے, 18 سال سے کم بچوں کو سرگت نہ دی جائے, پبلک مقامات پہ تمباکو نوشی کی اجازت نہ دی جائے, تمباکو کو گلیمرائز کر کے نہ پیش کیا جائے, لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر لوگوں میں تھوڑا بہت یہ شعور پیدا بھی ہو گیا ہے کہ یہ مضر صحت ہے, لیکن دوسرا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے پالیٹیشنز, ہمارے بیوروکریٹس کے لیے ہم لوگوں کی زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ تمباکو کے سیل سے انہیں پیسہ نصیب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان سے توجہ کم دی جا رہی ہے, اور وہ لاز جو ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے.
جی
اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تمباکو نوشی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہم ساری چیزوں کو صرف ایک یہ بتا دینا کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے یا پیکٹ پہ یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے, جب تک کہ آپ یہ سارے لاس کو ایک ساتھ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, تمباکو کا استعمال سوشلی انایکسپٹیبل نہیں کریں گے, جب تک میں سمجھتا ہوں ہم اس وبا کو قابو سے نہیں کر سکتے. اور ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سگریٹ اتنی سستی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی روپے 2 روپے میں جا کے اپنی سگریٹ خرید سکتا ہے, کھلی سگریٹیں مل رہی ہیں. تو جب تک ہم اس کے وہ سارے میجرز نہیں لیں گے, آئی تھنک وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول.
جی یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب سگریٹ بیچے جاتے ہیں تو ایک وارننگ لکھی جاتی ہے, پاکستان میں جب یہ جو سگریٹس بیچے جاتے ہیں آپ کے خیال میں وہ وارننگ کافی حد تک نظر آتی ہے یا اس کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے یہ بھی بڑی مشکلوں سے کیا گیا ہے, یہ سارے جو ہمارے ڈاکٹر حضرات اور جو کہ ہماری سوسائٹی وغیرہ ہے اس کی شور و غل سے اور پھر باہر کی طرف سے پریشر آیا کہ چھوٹی سی پکچرل وارننگ دے دی گئی ہے. جس ملک میں صرف 30% تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہاں یہ لکھ دینا کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے تو کون لوگ اس کو پڑھیں گے. لیکن ہاں چھوٹی سی ایک پکچرل وارننگ آ گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سائز بڑا کرنا چاہیے, اور وہ سارے جو میجرز ہیں جو کہ کرٹیل کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں ٹبیکو کا کنزمپشن, ان سب کو امپلیمنٹ کرنا صرف ایک چیز سے یہ چیز نہیں ہو پائے.
اچھا بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. یہ تھے چیسٹ ڈیزیز اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم رضوی, اور ان کے ساتھ تھے ایک ماحولیات کے ماہر ناصر پمر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل امتیاز عالم کو, ان کے ساتھ تھے بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار, اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے بول کے بیورو چیف اعجاز خان, سیاسی تجزیہ کار بابر ایاز, اور یہاں امریکہ سے تھے ڈاکٹر طاہر روہیل جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے جیکسن وٹ اور جونا کمنگز, پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.